पैराग्राफ चेंज। इस बिंदु पर कुछ चर्चा हम सगुण भक्ति काव्य का करना चाहेंगे, जो विचार के स्तर पर परंपरागत सामाजिक सोच और सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर पाता। कृष्ण भक्ति काव्य से चलकर राम भक्ति काव्य में और भी रूढ़ हुआ दिखाई पड़ता है। इस स्थिति के अपने वस्तुगत कारणों का संकेत हम पीछे कर चुके हैं, विशेषतः तुलसीदास के प्रसंग में। पर हमारा यह कहना भी है कि सोच के धरातल पर भले ही सगुण भक्ति कविता निर्गुण कविता की तुलना में अपने सामाजिक दृष्टिकोण में पिछड़ी हुई हो, संवेदना के धरातल पर वह मनुष्य और उसकी नियति के प्रति कम चिंताशील नहीं है। निर्गुण संतों के अपने अलग अंतर विरोध है। जहाँ तक सगुण भक्तों का सवाल है, उनके अंतर विरोध का स्वरूप यह है कि जहाँ और जब भी वे भक्ति आंदोलन की उदात्त मानवीय चेतना से एक तान हुए हैं, वे निर्गुण संतों के समान ही मनुष्य सत्य का उद्घोष करते हैं, मनुष्य के प्रति होने वाले सामाजिक अन्याय का प्रतिवाद करते हैं। और महज विचार के धरातल पर ही नहीं, चित्रण के धरातल पर भी अपनी इस उन्नत सोच को अभिव्यक्ति देते हैं, उस सामाजिक और मानवीय मूल्यों की हिमायत करते हैं जिनके पक्ष में निर्गुण संत खड़े हुए थे। किंतु जब वे भक्ति आंदोलन की उदात्त चेतना से अलग उन संस्कारों से बंध जाते हैं जो परंपरा ने, समाज ने, उनकी वंश परंपरा ने उन्हें दिए हैं, वे परंपरागत सामाजिक सोच के तहत उस व्यवस्था की हिमायत करते हैं जो शास्त्र सम्मत है, वेद निहित है। यह द्वंद्व सगुण भक्त कवियों में, विशेषतः तुलसी में, सबसे अधिक मुखर कर सामने आता है। परहित को सबसे बड़ा धर्म और पर पीड़ा को सबसे बड़ी अधमाई कहने वाले तुलसी, जब धर्म को वेद और शास्त्र से जोड़ते हैं, पर पीड़ा पर टिकी हुई परंपरागत समाज व्यवस्था की कुछ संशोधनों के साथ हिमायत करते हैं, तो उनकी चेतना के ये दो स्तर साफ उभर आते हैं। प्रश्न संख्या 294। फिर भी तुलसीदास में ऐसा बहुत कुछ है, कवितावली में, विनय पत्रिका में, हरमान बाहुक में और मानस में भी, और सूरदास में तो बहुत उभरे हुए रूप में, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर समूचा भक्ति काव्य प्रशस्त मानवीय सरोकारों का, गहरी मानवीय चिंता का, मानव करुणा का काव्य है। सब कविताओं की सामाजिक सोच एक जैसे भले ही न हो, उसका मूलवर्ती स्वर उदात्त है, वह मनुष्य के सामाजिक न्याय के पक्ष का काव्य है। पैराग्राफ चेंज। इस भक्ति काव्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसका भाषा में रचा जाना है और इस नाते साधारण जन के साथ इसकी संपृक्ति है। पहली बात, कविता जनता की भाषा में जन मन को संबोधित होती है। जन मन को संबोधित ही नहीं होती, जन मन को, जनता की अपनी आशाओं आकांक्षाओं को उनके जीवन में उतर कर उसे भली भांति पढ़ते और गुनते हुए वाणी भी देती है। लोक जीवन के बीच, साधारण जनमानस के बीच इस भक्ति काव्य की जो लोकप्रियता है, उसका एक बड़ा कारण उसका लोक की अपनी भाषा में लिखा जाना है। लोक की अपनी भाषा में इसका लिखा जाना इस नाते से भी महत्वपूर्ण है कि वह आगामी रचनाशीलता के लिए इस बात में एक मिसाल बनता है कि जनता की अपनी जबान में रची गई कविता ही जनता के दिल दिमाग को जीत सकती है, बशर्ते वह उस जनता की आकांक्षाओं से जुड़ी हो। लोक जीवन और जनता से जुड़ने की बातें सब करते हैं, लोक के हृदय और जनता की अपनी बोली बानी का प्रतिनिधि होने का दावा भी सब करते हैं, किंतु लोक की अपनी बोली बानी में, लोक की अपनी आशाओं आकांक्षाओं को लोक हृदय में उतर कर मूर्त कितने कर पाते हैं, यह कहने की बात नहीं है। ये भक्त और संत मानक है आज की उस रचनाशीलता के लिए और रचनाकारों के लिए, जो वस्तुतः साधारण जन के हित में प्रतिश्रुत है। जनता के दिल दिमाग में गहरे उतरना और सदियों के अंतराल के बावजूद स्थायी बने रहना, इन संतों और भक्तों की अपनी रचना की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह केवल धर्म और भक्ति का जादू या नशा ही नहीं है, जनमानस की उनकी गहरी पहचान और उससे उनका एकात्म है, जिसके चलते अपनी बात को भी बिना किन्हीं चमत्कारों का सहारा लिए सरल किंतु प्रभावी ढंग से कह सके हैं। उनके पाठकों का दायरा भी इतना बड़ा है कि शिक्षित, अशिक्षित, स्त्री पुरुष आबाल वृद्ध सब उसमें आ गए हैं, अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी ग्राह्यता के साथ, अपने अपने प्रयोजनों को पाते हुए। पृष्ठ संख्या 295। उनकी वाणी भले ही भक्ति की हो, उनका साध्य भी भले ही भक्ति हो, वह जितनी ही भक्त वाणी है उतनी ही कविता सरल किंतु बेधक, गहन अनुभूतियों वाली और पारदर्शी, ऐसी कविता ही कालजयी कहलाती है। अपने समय के लिए जो वह महत्वपूर्ण होती ही है, आगे के समयों के लिए भी उतनी ही अर्थवान, उतनी ही प्रासंगिक होती है। पैराग्राफ चेंज। कुछ जायजा इस कविता का लिया जाए और देखा जाए कि वह क्यों कर हमारी इतनी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है। हम कह चुके हैं कि कविता महज विचार नहीं होती, उसका संसार बुनियादी तौर पर इंद्रिय बोध और भावों का संचार है। विचार इतनी संश्लिष्टता में ही कविता में आ सकते हैं। महान रचनाओं में तीनों तत्वों की संश्लिष्टता ही महानता की कसौटी बनती है। जहाँ तक भक्ति कविता का संसार है, निर्गुण संतों की वाणी कविता की दृष्टि से मानक नहीं है। शुक्ल जी के मत में तो वह कविता ही नहीं है, परंतु यदि वह कविता है तो विचार बहुल कविता। भक्ति के धरातल पर ही वह अपनी कविता होने का प्रमाण देती है, जहां भक्ति की प्रगाढ़ अनुभूति को बड़े पारदर्शी तरीके से अव्यक्त किया गया है। इससे इतर वह काव्य तत्व में दुर्बल है, फिर उसका संसार भी सीमित संसार है। महज भक्ति के दायरे में बंधा हुआ उसकी तुलना में मलिक मोहम्मद जैसी तथा सगुण भक्तों की कविता अपनी संपूर्णता में महत कविता के रूप में अपना परिचय देती है। इन कवियों के बारे में हम पहले ही कह चुके हैं। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि मनुष्य के इंद्रिय बोध और भाव जगत की समर्थतम अभिव्यक्ति हमें इस काव्य में मिलती है, वह मीरा का हो, जैसी का हो, सूर्य या तुलसी का हो। मनुष्य के मन में गहराई तक ये भक्त प्रवेश कर सके हैं और उसे उद्घाटित कर सके हैं। मनुष्य के सुख दुख हो अथवा इनका आत्मनिवेदन, आख्यानक तथा मुक्तक दोनों ही काव्य प्रकारों में इन भक्त कवियों ने मानव मन को गहराई तक जाकर छुआ और उजागर किया है। यह कविता जीवन से जुड़ी हुई कविता है, मनुष्य के राग की कविता है। जीवन के समूचे प्रसार में फैली वह हमारे समक्ष संसार के सौंदर्य को शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के इंद्रिय अनुभवों को उनकी संपूर्णता में खोलती है। वह उन्नत मानवीय बोध की कविता के रूप में हमें अपनी पहचान कराती है। भक्ति के आवरण के बावजूद वह हमें मनुष्य और जीवन की सारभूत सत्य से परिचित कराती है। वह जन मन की आकांक्षाओं को, लोक जीवन की बहुआयामी सौंदर्य को उद्घाटित करने वाली संपूर्ण और मुकम्मल कविता है। पृष्ठ संख्या 296। उसकी महत्ता और उसके प्रभाव को इस बात से भी जाना जा सकता है कि वह अपने समय का अतिक्रमण कर हमारे अपने समय के महाकवियों का आदर्श बनी है, उन्हें प्रेरणा दे सकी है। भक्ति की यह कविता वस्तुतः, जैसा कि हमने कहा, मानवीय चिंता की कविता है। भक्तों के सामाजिक आदर्श भले भिन्न हो, वह उन्नत सामाजिक मूल्यों की कविता है। वह हमारे सामाजिक संबंधों, पारिवारिक नाते रिश्तों को एक मूल्य व्यवस्था देने वाली कविता है। ये मूल्य बदले हुए समय में उसके साथ पूरी तरह भले ही न अट पाए, इन भक्तों और संतों की सामाजिक चिंता के परिचायक जरूर है। पैराग्राफ चेंज। आचार्य द्विवेदी ने निर्गुण और सगुण भक्ति कविता में भिन्नताओं के बीच कतिपय ऐसे तत्वों को उभारा जहां उनमें कोई भेद नहीं है। इन तत्वों में एक संतों और भक्तों का यह विश्वास है कि प्रेम से बढ़कर और कोई पुरुषार्थ नहीं है। प्रेम सभी संतों और भक्तों का केंद्रीयवर्ती स्वर रहा है। इस प्रेम के समक्ष मनुष्य और मनुष्य के सारे भेद नगण्य है। यह वह तार है जो भेदों का अतिक्रमण करता हुआ मनुष्य मात्र के हृदयों के बीच से उन्हें एक सूत्र में गूंथता हुआ गया है। भेद बुद्धि के विसर्जन के बाद ही इसकी उपलब्धि हो सकती है। अहम को भस्म करके ही उसे पाया जा सकता है। उसे पा लेना ईश्वर को पा लेना है। इसे सभी संतों और भक्तों ने बार बार दोहराया है। कबीर जब कहते हैं कि यह प्रेम किसी बाग बगीचे या खेत में नहीं पैदा होता, न ही यह बाजार में बिकता है, राजा हो या प्रजा, कोई भी इसे पा सकता है। शर्त यही है कि अपना शीश काट कर पहले जमीन पर रख देना होगा। तो वे वस्तुतः इस प्रेम को ईश्वर के समकक्ष ही घोषित कर रहे होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के यहाँ भी उनके राम को यदि कुछ भी प्रिय है तो वह है प्रेम ही, जिसमें अनन्यता है, समर्पण है, समस्त भेद बुद्धि का त्याग है, जो प्राणी मात्र तक व्याप्त है। मीरा इस प्रेम को लेकर ही बावली रही और उससे उपजे दर्द को दर दर भटकते सबको बांटती फिरी। सूरदास और मलिक मोहम्मद जायसी के यहाँ भी यही प्रेम ईश्वर रूप बनकर व्याप्त है। मानुष प्रेम भयो बैकंठु, ये संत और भक्त बराबर इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ईश्वर से या आराध्य से एकात्म और एक तान होने के लिए जरूरी है कि पहले मनुष्य मनुष्य से प्रेम करे। मानव प्रेम की बुनियाद पर ही वह इमारत खड़ी होगी जिसके भीतर पहुंचकर आराध्य का दीदार हो सकेगा। धर्म और अध्यात्म के आवरण में कही गई ये बातें संतों और भक्तों की उस मानवीय चिंता की उपज है जो समूची मनुष्यता को प्रेम के मजबूत धागे में बंधी देखना चाहती थी। जब संसार और समाज में सर्वत्र विग्रह की स्थितियां व्याप्त हो, चारों ओर हिंसा, घृणा, विनाश और रक्तपात के नजारे दिख रहे हो, मनुष्य प्रेम की बुनियाद पर टिकी और भक्तों की वाणी का मूल्य और महत्व क्या हो सकता है, यह कहने की बात नहीं। पैराग्राफ चेंज। भक्ति कविता की, वह संतों की हो अथवा भक्तों की, एक बुनियादी विशेषता उसकी यह दृढ़ स्वीकृति है कि संसार असार या मिथ्या नहीं है और ना ही उसके सुख दुख असार या मिथ्या है। ये भक्त भले ही अनहद नाद सुनते हो, भले ही शून्य में समाधि लगाते हो और ये भक्त भले ही नित्य वृंदावन में रमते हो, कल्पना के राम राज्य में विचरते हो, संसार और उसके रहने वालों के सुख दुख से कभी विरत नहीं हुए हैं, इनकी भक्ति वैराग्य मूलक भक्ति नहीं है, वह राग तत्व को लेकर पल्लवित होने वाली भक्ति है। संसार और समाज, घर और परिवार के सारे नाते रिश्ते उसमें स्वीकृत है। इन्होंने बार बार इस तथ्य को प्रतिपादित किया है कि इस भक्ति को पाने के लिए और इसके माध्यम से आराध्य तक पहुँचने के लिए वैरागी बनने, घर परिवार छोड़ने या संसार और समाज से नाता तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठेठ संसार के बीच रहते हुए अपने सारे सांसारिक, सामाजिक और पारिवारिक दायित्व निभाते हुए, कर्म करते हुए मनुष्य इस भक्ति का अधिकारी हो सकता है, इस पर को पा सकता है। गोस्वामी जी की भक्ति का विवेचन करते हुए शुक्ल जी का कहना है कि राम के यहाँ का रास्ता ठेठ जीवन के भीतर से गया है। इन संतों और भक्तों ने जो यह सब प्रतिपादित किया है उसे स्वयं आचरित भी किया है। कर्म प्रधान विश्व से भागकर, दायित्वों से विमुख होकर, भभूत लगाकर, घर बार छोड़कर की जाने वाली भक्ति छद्म और दिखावा है। जीवन के भीतर से संसार और समाज के सारे दायित्वों के बीच से कर्ममय कर्मठ जीवन की संपूर्ण स्वीकृति के पश्चात उपजी भक्ति संबंधी इस सोच ने उसके समय और समाज में जो अपनी सकारात्मक रचनात्मक भूमिका का निर्वाह किया है, वह आगे के समय में भी एक आदर्श के रूप में मान्य हुई। इसे इन संतों और भक्तों की समाज को एक महनीय देन ही माना जाएगा। पैराग्राफ चेंज। इस कविता का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम लोक संस्कृति का उद्घाटन है। लोक संस्कृति का उद्घाटन ये भक्त इसलिए कर सके हैं कि ये स्वतः उस संस्कृति की उपज थे। उनकी संवेदना मूलतः किसान संवेदना है। अवध की लोक संस्कृति जहाँ तुलसीदास और जायसी में अपनी सारी विशेषताओं के साथ मूर्त हुई है, वहाँ सूरदास में ब्रज प्रदेश की लोक संस्कृति अपनी सारी मधुरता के साथ विद्यमान रही है। मीरा के पदों में राजस्थान की लोक संस्कृति के स्वर गूंजे हैं और उनके अपने दर्द में घुल मिल गए हैं। पृष्ठ संख्या 298। लोक जीवन के चित्रों के अलावा इन भक्त कवियों की भाषा में भी लोक मन की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। इनके पदों में लोक गीतों की एक मीठी सी मिठास है। इनके छंदों और इनके काव्य रूपों का लोक मन से सहज नाता रिश्ता है। लोक की परिचित और आकांक्षित शैली में रची उनकी कविता इसी नाते लोक चित्त से नहीं उतरी है, उनमें नक्श सी बस गई है। पैराग्राफ चेंज। इसे एक महत्वपूर्ण घटना ही कहा जाएगा कि युग की विशिष्ट वस्तु जगत स्थितियों के संदर्भ में मध्यकाल के एक खास दौर में हमें उन वर्गों और वर्णों से प्रथम कोटि के संत मिले जिन्हें शूद्र और अंत्यज कहा जाता था। ऐसा फिर आगे कभी नहीं हो सका। हमें भक्ति कविता के अंतर्गत नारी भक्तों की एक जमात मिली, जैसा कि उस युग के लिए सहज न था। यही नहीं, समूचे भक्ति काल में इतने कालजयी कवियों भक्तों का एक सा आविर्भाव अपने में कम आश्चर्यजनक नहीं है। यह सब खास भक्ति युग की विशेषता है। ये वे रचनाकार भक्त हैं जो सदियों से भारतीय जनमानस में विद्यमान है अपनी रचनाशीलता के बूते पर। इनकी आस्था, इनका स्वाभिमान, इनका लोक की जड़ों से जुड़ना, यह सब हमारे लिए आज के लिए मिसाल है। मानव जीवन के सारे पक्षों पर इन्होंने लिखा। जीवन के सारे कार्य व्यापार इनके लेखन की परिधि में आए। व्यक्ति, परिवार, समाज, सबके अंतर्गत को इन्होंने देखा और उनका मार्गदर्शन किया। प्रेम को अपना आदर्श मानते हुए इन्होंने समाज के समक्ष उसकी शक्ति को उजागर किया। प्रेम का ही तत्व है जहाँ सगुण निर्गुण सब समर्पित है। यह प्रेम नाना भूमियों में, नाना मनोदशाओं में इनकी अभिव्यक्ति का विषय बना है। राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संक्रांति के युग में प्रेम के इनके संदेश ने बहुत से गांवों को भरा। सामाजिक जीवन में अपनी सकारात्मक भूमिका अदा की। ये निष्प्रिय भक्त थे जिन्हें राजसत्ता या समाज सत्ता किसी का भी कोई भी प्रलोभन सर्वथा अमान्य था। अपने आराध्य के प्रति संपूर्ण समर्पित इनका सरोकार सिर्फ साधारण जनता और उसके जीवन से था। उसी को उन्नत बनाने में ये लगे रहे। इसी नाते ये उनके द्वारा स्वीकार हुए और सराहे गए। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियों का यह एक संक्षिप्त विवेचन है। रचना वही महत्वपूर्ण होती है जो अपने समय के लिए तो जरूरी हो ही, आने वाले समय के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक हो। भक्ति कविता ऐसी ही कविता है जो अपने समय में तो महत्वपूर्ण थी ही, आज के समय के लिए भी अर्थवान है। वह हमारी ऐसी विरासत है जिसे हमें कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना है और संरक्षण देना है।